हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अंबिका ने वेदांश को सोते हुए देखा, लेकिन उसका दिल शांत नहीं था। वो चाहती थी कि वेदांश उससे बात करे, उसे बताए कि वो कहाँ था और क्यों वो इस हालत में है। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। शायद उसे अभी आराम की जरूरत है, उसने खुद से कहा। लेकिन मैं कैसे शांत रहूं? ये सब क्या हो रहा है? वो धीरे से बिस्तर के किनारे बैठ गई और वेदांश के चेहरे को निहारने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उसने अपना हाथ वेदांश के सिर पर रखा, उसकी पेशानी से पसीना पोंछा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो वेदांश, अंबिका ने मन ही मन कहा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। वो नहीं चाहती थी कि वेदांश उसे इस हालत में देखे। वो वहीं बैठे बैठे सोचने लगी, ये सब कब तक चलेगा? हम कब तक ऐसे रहेंगे बिना किसी बात के? वेदांश को मुझ पर विश्वास भी नहीं है, वो मुझसे अपनी तकलीफें भी साझा नहीं कर सकता। वो सोच रही थी कि आखिर वेदांश इतनी देर रात कहाँ गया था। उसे शक हो रहा था कि वेदांश किसी बड़ी परेशानी में फंस चुका है, लेकिन वो खुद उसे बताने से डर रहा है। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मुझे उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए? अंबिका का मन कई उलझनों में था, लेकिन उसका एक ही जवाब था, वेदांश को अब उसकी ज़रूरत है और वो उसका साथ नहीं छोड़ सकती। वेदांश के सोते ही अंबिका उसके बगल में चुपचाप बैठी रही, उसके चेहरे की थकावट को देखते हुए। उसने मन ही मन एक वादा किया कि जब वेदांश उठेगा वो उससे आराम से बात करेगी, उसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं पूछेगी, बस उसका साथ देगी। अंबिका के मन में अब भी एक अजीब सा खालीपन था। उसने वेदांश के हाथ को हल्के से पकड़ा और सोचा, पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, पता नहीं कब हम दोनों एक दूसरे के मन का हाल जान पाएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे मन में क्या है तुम्हारे लिए। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अब समय था वेदांत का ख्याल रखने का, न कि उसे और परेशान करने का। रात बीत गई और अंबिका वहीं बैठी रही वेदांश के साथ। उसने फिर एक बार वेदांश के चेहरे को देखा और हल्के से मुस्कुराई। अंबिका रात भर वेदांश के बगल में बैठे बैठे ही सो गई थी। उसकी नींद हल्की थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। सुबह के हल्के उजाले में जब कमरे का दरवाज़ा अचानक खुलने की आवाज़ हुई तो वो चौंक कर उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वेदांश बिस्तर पर नहीं था, वो कमरे में अकेली थी। उसकी आंखें पहले दरवाजे की तरफ उठीं और उसने देखा कि दरवाजे से अंदर वेदांश नहीं बल्कि उसकी माँ थीं। उनका चेहरा परेशान लग रहा था और हाथ में उनका मोबाइल था। बेटा, तुम्हारे घर से फ़ोन है, वेदांश की माँ ने धीरे से कहा। ये लो, तुम बात कर लो। अंबिका ने कोई सवाल किए बिना ही फ़ोन पकड़ लिया और कांपते हाथों से उसे अपने कान पर लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो सुनती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से एक एक करके आंसू गिरने लगे। कुछ ही पल में उसने कॉल काट दी। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था और उसकी आंखों में घबराहट साफ छलक रही थी। इसी बीच वॉशरूम से वेदांत बाहर निकला। उसके बाल गीले थे और वो तौलिए से बाल पोंछ रहा था। जब उसने अंबिका और अपनी माँ को वहाँ खड़े देखा तो वो थोड़ा चौंक गया। क्या हो रहा है यहाँ? वेदांश ने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। अंबिका ने धीरे से फ़ोन नीचे किया और उसकी आंसू लगातार बहते रहे। उसने वेदांश की माँ को फ़ोन वापस थमाया। थैंक यू आंटी, आपने मुझे फ़ोन दिया, इसी वजह से मुझे पता चल पाया। उसकी आवाज़ कमज़ोर और टूटी हुई थी। वेदांश ने उसका चेहरा देखा जो दर्द और परेशानी में डूबा हुआ था। वो थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, क्या पता चला अंबिका, किसका फोन था? अंबिका ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। वेदांश, मेरे पापा, उन्हें फिर से पैरालिसिस का अटैक आया है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, सब लोग वहाँ हैं और बहुत परेशान हैं। उसकी आवाज़ घुटने लगी थी। वो वेदांश की तरफ मुड़ी और आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मुझे जाना होगा वेदांश, मुझे पापा से मिलना है, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ मुझे ले चलो। वेदांत की माँ, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अंबिका के चेहरे की हालत देखकर खुद भी भावुक हो गईं। उन्होंने वेदांत की तरफ देखा और गंभीर आवाज़ में कहा, बेटा, प्लीज़ इसे इसके घर ले जाओ, इसके पापा को अब जरूरत है। अगर उन्हें कुछ हो गया और अंबिका उनसे न मिल सकी तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं। वेदांत, जो पहले से ही सोच में डूबा हुआ था, अब अपनी माँ की बात सुनकर और भी गहरी सोच में पड़ गया। उसकी आंखें अंबिका की ओर थीं, जो रोते होते बस खड़ी थी, आंखों में चिंता और लाचारी। वेदांत ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था। वो खुद भी अजीब हालात से गुजर रहा था, लेकिन अंबिका की हालत देखकर वो मना भी नहीं कर सकता था। अंततः उसने गहरी सांस ली और ठहराव भरे स्वर में कहा, ठीक है अंबिका, तैयार हो जाओ, हम अस्पताल के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही अंबिका ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, थैंक यू वेदांश, मैं अभी तैयार होती हूँ। उसकी आवाज़ में कृतज्ञता और बेबसी का मिलाजुला स्वर था। वेदांत ने उसकी ओर एक लंबी नज़र डाली। उसकी माँ भी अंबिका की हालत देखकर दुखी हो गई थीं। उन्होंने धीरे से अंबिका के कंधे पर हाथ रखा, जाओ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम इंतज़ार करेंगे। अंबिका ने सिर हिलाया और तुरंत कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ वो जल्दी से अपने कपड़े बदलने के लिए चली गई। अंदर जाते वक्त उसके कदमों में थोड़ी जल्दी थी, लेकिन उसकी चाल से उसकी घबराहट साफ छलक रही थी। टू बी कंटिन्यूड। वेदांत क्या छुपा रहा है? क्या चल रहा है उसकी लाइफ और उसके मन में? अंबिका क्यों उसकी तकलीफ में परेशान हो रही है और क्यों वो उसे इस तरह नहीं देख पा रही? क्या चल रहा है अंबिका के मन में? क्या अंबिका जान पाएगी और कभी पूरी तरह शामिल हो पाएगी वेदांश की जिंदगी में? और वेदांश क्यों तैयार हुआ अंबिका को अस्पताल ले जाने के लिए? क्या लगता है आप लोगों को? बताइए कॉमेंट में।